तो कब्र में भी इसी तरह होगा। एक खूबसूरत लिबास और नहायत खुशबू वाला आदमी आएगा और कहेगा, खुशखबरी पाओ, खुशखबरी पाओ उस चीज की जो तुमको खुश कर दे। ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो कहेगा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो खैर का पता देता है। वो जवाब देगा, मैं तेरा नेक अमल हूं। सुभान अल्लाह। कभी इसमें शक ना करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अफा नजल मुस्लिमी न कल मुजरिमी मा लकुम कई फता कुमून। तुम क्या समझते हो हम मुसलमानों को उस तरह कर देंगे जैसे मुजरिम है? उन्हें इनका इनके जो कुर्बानियां हैं, इनकी जो इस्तकामत है, इनके जो दीन के रास्ते में चलने में तकालीफ बर्दाश्त करना है, इनके साथ जो लोग सलूक करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो ईमान वाले हैं, तो हम क्या आखरत में इनको उनके जैसा ही बना देंगे जैसे मुजरिम है? सारों का एक ही, कैसे फैसले करते तुम? नहीं, कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा। अगर दुनिया में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन हक पे और कौन बातिल पे, और यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को हो रही है, कयामत के दिन तो सब खुल जाएगा, बिल्कुल सामने होगा। फिर ईमान वालों को अल्लाह ताला उनके लिए हिसाब किताब को आसान करेगा। दाएं हाथ में उनका नाम आया अमालों का, वो जल्दी जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला की ये सारी मदद की सूरतें हैं। और फिर अल्लाह ताला आखरत की जितनी मंजिलें हैं उनके लिए आसान करता चला जाए, क्योंकि उनके ईमान ऐसे थे। तो जिसके लिए वहां के गम और वहां की फिक्र खत्म हो जाए, सबसे असल तो वहीं के गम है ना। ये ईमान वाले के लिए तो सबसे ज्यादा गम है ना, या सबसे ज्यादा जो फिक्र होती है ना, वो आखरत की होती है। उसने तो कभी दुनिया की फिक्रों या इनके गमों को गम बनाया ही नहीं था। तो जब उसकी मदद वहां हो गई तो वो तो विनर है। इस तरह से अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा वहां भी। गवाह जो होंगे वो उनके हक में गवाहियां देंगे, जमीन उनके हक में बोलेगी, फरिश्ते उनके हक में बोलेंगे, उनके आज़ा, उनकी उंगलियां, उनकी तस्बीहात की गवाहियां देंगी। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम, अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम। तो जिसके हक में इतने बोल रहे हो, अल्लाह की मदद ही है ना ये, तो कयामत के दिन भी उनके साथ अल्लाह की मदद होगी और दुनिया में भी अल्लाह ताला की मदद। जहां पे जरा टूटने लगते हैं वहीं फरिश्ते तसल्लियां देने को पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उनके औलिया है ना इस दुनिया में भी। वो कहते हैं, हम तुम्हारे औलिया थे दुनिया में भी, तुम देख नहीं सकते थे लेकिन हम तुम्हारे साथ थे, साथ साथ रहते थे, तुम्हारे दिल को बांधते थे, मजबूत करते थे। देखा आपने, कभी कभी ऐसा होता है इंसान डाउन होने लगता है, फिर दिल के अंदर कोई ख्याल आता है, इंसान फिर खड़ा हो जाता है। वो तसल्लियां फरिश्तों की तरफ से। तो अल्लाह ताला अकेला नहीं छोड़ता, चाहे आपको लग रहा हो कि ये तो बेयारो मददगार, बिल्कुल इनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, पता नहीं इनका खुदा कहाँ है। नहीं, इनका रब सुनता भी है, देखता भी है, जानता भी, पर उसके मदद के रंग मुख्तलिफ हैं। शायद जो आपको लग रहा हो कि ये तो मदद कोई नहीं है, वो ही उनके लिए सबसे बड़ी मदद हो, क्योंकि हम दुनिया की ग्लासेस से, दुनिया की ऐनक से हर चीज देखते हैं। हमारे आखरत की ग्लासेस पहनी ही नहीं हुई ना, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि यहाँ का नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान, यहाँ का नफा ही सबसे बड़ा नफा। हालांकि अगर आखरत की ऐनक पहन दे तो दुनिया का नुकसान तो कुछ भी नहीं है, जो आखरत का नुकसान है उसके मुकाबले में। और जो आखरत में जीत गया वो ही जीता है, क्योंकि आपको पता है कि वो जहन्नुम में एक गोता भी खाएगा आदमी तो भी वो कहेगा कि मैं दुनिया में तो कभी कोई सुख देखा ही नहीं, और एक गोता जन्नत में खाएगा कहेगा दुनिया में तो कोई दुख देखा ही नहीं। तो फिर क्या समझ आई? अल्लाह अकबर। तो जो भी दुनिया में दीन की वजह से, अपने ईमान की वजह से मुश्किल उठा रहा है, उसके लिए बड़ा हौसला बुलंद करने वाली ये आयत है, बड़ी खुशखबरी देने वाली ये आयत है। और उसको खड़ा कर देने वाली आयत है। देखो कुरान कैसे तसल्लियां देता है, कुरान से लोग भागते हैं, ये तो दिल को मजबूत करता है, ये तो हौसला देता है आगे बढ़ने का। हम हक पे हैं और हमने हक पे जमे रहना है। और ये यकीन हो जाए ना तो कोई भी पीछे ना हटे, मेरे साथ अल्लाह की मदद है, बस मुझे और क्या चाहिए। यौम ला यन्फाउ ज़ालिमीन माज़रतुहुम, जिस दिन जालमों को कोई माजरत काम नहीं देगी। अब दूसरी तरफ, एक तरफ ईमान वालों का हाल बताया गया तो दूसरी तरफ जालमों का, मुशरिक भी जालिम है और वो भी जालिम है जो इंसानों के ऊपर जुल्म करता है, वो भी जालिम है, उसको कोई माजरत काम नहीं देगी, कोई उजर वो पेश करे, कोई एक्सक्यूज दे, उनका एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। अगर इससे मुराद मुशरिक लें तो मुशरिक तो आप देख लें, शिर्क कितनी मनहूस चीज है कि उस दिन मुशरिक खुद इस चीज का इनकार करेगा कि मैं तो वो शिर्क करता ही नहीं था, उस दिन वो खुद कहेगा। तो मुशरिक के लिए तो कोई माजरत है ही नहीं है, और दूसरे के लिए भी कोई माजरत नहीं। देखिए अल्लाह ताला जिसे पूछ ले कि तुमने ये क्यों किया, क्यों किया ये तुमने, उसके पास क्या एक्सक्यूज होगा। अब ये जालिम, आप आम जिंदगी के जालिम भी देख लें, किसी सूरत में भी किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया और उसकी ज्यादती की हो और ये सोचा हो कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, किसी को क्या पता चलता है, और जिसके ऊपर मैं जुल्म कर रहा हूं इसका पुरसाने हाल कोई नहीं, इसका आगे पीछे कोई नहीं है जो आके मेरा हाथ पकड़ेगा, जो इसके लिए मेरे सामने खड़ा होगा, कोई भी नहीं है इसका, मैं जो मर्जी करूं आज। लेकिन उस दिन क्या होगा जब जालिम को खड़ा करा जाएगा, तो उनकी कोई माजरत उनको नफा नहीं देगी। जहां पे एक बेसींग बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा हो तो अल्लाह ताला उसका भी बदला उसको दिला देगा, वहां पे ये क्या करेंगे जो आज दुनिया में बड़े बड़े जुल्म करते फिर रहे हैं। यहाँ पे घरों में जुल्म हो रहा है, कोई शोहर बीवी पे जुल्म कर रहा है, कोई बहू सास के साथ बुरा कर रही है, कोई सास बहू के साथ कर रही है, कोई ससुराल अपने बहू बेटी के साथ उनके साथ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। ये भी तो जुल्म है जो चार दीवारियों के अंदर हो रहे हैं, और उनके लिए कोई पुलिस नहीं है, कोई अदालत नहीं है, किसी जगह नहीं जा सकते। लेकिन एक अल्लाह के हाँ ऐसी अदालत है जिसमें बंद कमरों की चीजें भी हैं, और उस दिन वो केस भी सामने आएंगे जिसकी कोई पूछ दुनिया में नहीं है। आज ये भी जुल्म हो रहा है जो अल्लाह की नाफरमानी की सूरतों में हो रहा है। रब्बाना ज़लमना अनफुसाना, कहा था ना आदम अलैहिस्सलाम ने, एक ही नाफरमानी की थी ना, तो फरमाया हमने अपनी जान पे जुल्म किया, ठीक है, ये भी जुल्म है। जो उस दिन जालिम को, तो जो भी जुल्म करने वाले नाफरमानियां करने वाले डटे हुए इसके ऊपर, और जरा भी इस चीज के ऊपर कोई पशेमानी नहीं, जरा इस चीज के ऊपर कोई तरद्दुद नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, जम के कर रहे हैं, ढिटाई के साथ कर रहे हैं, वो उस दिन क्या माजरत पेश करेंगे जब अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों किया, क्या कहेंगे। डू वी हैव एनी एक्सक्यूज। जहां जहां हम जुल्म कर रहे हैं हम क्या बताएंगे, उस दिन तो इंसान फिर यही कहेगा मुझे एक दफा वापस भेज दें फिर नहीं करूंगा। मैं क्या ये उजर कबूल किया जाएगा, तो कोई भी माजरत कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ अब अपने गुनाहों का इकरार करके उस गुनाह से बेजारी का इजहार करेंगे कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है अपना ये गुनाह, तो क्या ये माजरत कबूल होगी। लाना तो, और उनके लिए लानत है। लानत क्या होती है, रहमत से दूरी। हर वो अमल जो इंसान के ऊपर लानत का बायस बनता है उससे दूर भागे, क्यों, इसलिए कि जन्नत का दाखला सिर्फ अल्लाह की रहमत से है, पता है ना आपको। ये सिर्फ अल्लाह तआला की रहमत से, ये हदीस है। जब सहाबा ने पूछा था, हर कोई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कोई अल्लाह तआला की रहमत से ही जन्नत में जाएगा, तो अब सहाबा ने पूछा आप भी, आपने फरमाया मैं भी। तो अल्लाह तआला की रहमत जरूरी है उस दिन, जिसके साथ अल्लाह की रहमत होगी वही जन्नत में दाखिल होगा, और जो रहमत से ही महरूम कर दिया गया, अब खुद बताइए वो जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है। और बाज अमल ऐसे हैं जो इंसान के ऊपर लानत का बाइस बनते हैं, जिनमें एक जुल्म है, यहाँ पे जुल्म का बताया गया। और भी बाज अमल है, एक लेक्चर है लानत के मुस्तहिक जो वेबसाइट पे है, आप वरना वो सुन ले, आपको पता चल जाएगा कौन से अमाल ऐसे हैं जो इंसान के ऊपर लानत का बाइस बनते हैं। तो अगर लानत हो गई तो फिर दूरी है, चाहे दुनिया में हो उस बंदे की, उस अमल को बहुत पजीराई मिल रही हो, बहुत उसको वाहवाह मिल रही हो, एक्सेप्टेड हो यहाँ पे, कोई यहाँ पे इसको बुरा ना समझता हो, अगर वो अल्लाह ताला के हाँ लानत का सबब बनने वाला अमल है तो उसको छोड़ दे फौरन। तो अल्लाह की रहमत से दूरी इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, कैसे रह सकता है वो इस तरह से कि अल्लाह की रहमत के बगैर हो। हम तो सीख करते हैं अल्लाह की रहमत, और उसके लिए क्या है, वाला हम सू उद्गार, उनके लिए बुरा ठिकाना। बुरा ठिकाने से मतलब क्या है, जहन्नुम, क्योंकि जहन्नुम बुराई तो ठिकाना है, क्योंकि वहां पर एक पल भी सुकून नहीं होगा, एक पल भी, एक एक सेकंड का भी नहीं होगा, हर तरफ से अजाब ही अजाब होगा। खुशी तो छोड़े, खुशी तो बहुत दूर की बात है, वहां पे तो एक पल का आराम भी नहीं, चैन ही नहीं, मुसलसल जलना और मुसलसल तरह तरह के अजाब, और ऐसे अजाब जो वक्त के गुजरने के साथ साथ मजीद उनकी शिद्दत, उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी या उतनी नहीं रहेगी, बढ़ती जाएगी, जैसे सूरह नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये तो बुरा घर है उनके लिए जो जालिम है। वलकद आतैना मूसल हुदा, और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा अलैहि सलाम को हिदायत, हिदायत से मुराद यहाँ पे है तौरात, हमने उनको तौरात दी, और ये एक मिसाल है इस चीज की कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की कैसे मदद फरमाई, कि उनको तौरात अता फरमा के अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, यानी किताब का मिलना भी अल्लाह की मदद होता है। देखिए इस वक्त दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, कितने करोड़ मुसलमान हैं, उनके अंदर भी चंद एक ही होते हैं जिनको अल्लाह ताला चुनता है किताब के लिए, अपने कलाम को सीखने के लिए, समझने के लिए, और उनमें से भी आटे में नमक के बराबर होते हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक भी देता था अमल की। तो ये किताब का मिलना तो अल्लाह की मदद होती है, इसके ऊपर तो इंसान को खुश होना चाहिए और इसको अपने लिए एक ट्रेजर समझना चाहिए, ये मुझे मिल गई है, ये तो मैं सीने से लगा के रखूं, इसको कभी भी हाथ से जाने ना दूं, ये नहीं है मेरा कोर्स है। अब कोर्स कब खत्म होगा जी, कब खत्म होगा कोर्स, कितना अरसा रह गया, कितना और टाइम रह गया, अरे कोर्स खत्म हो तुम्हारी जान छूटे, अब नहीं मैंने करना दोबारा, बड़ी टेंशन है। नहीं, जिसको ये पता चल जाए ना कि ये तो अल्लाह की मदद की सूरत है, वो तो इसको कभी हाथ से जाने नहीं देगा, यही दुआएं करेगा, ए अल्लाह आखिरी सांस तक इसका साथ ना छूटे। तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात की शक्ल में हिदायत अता फरमाई, हिदायत इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया यहाँ पे कि मैंने मूसा अलैहि सलाम को दी, इतनी बड़ी नेमत। खाना पीना, रहना सहना, सांस लेना, सब नियमते उनका जिक्र नहीं है, घर बार रिश्ते उनका भी जिक्र नहीं, किताब का जिक्र, सुभान अल्लाह, हिदायत का जिक्र है। और वा औरसना बनी इसराइल अल किताब, और वारिस बनाया हमने बनी इसराइल को किताब का, किताब का वारिस बना दिया बनी इसराइल को, यानी इसके बाद मूसा अलैहि सलाम के बाद बनी इसराइल में ये किताब चली, मगर उन्होंने किताब के साथ क्या किया, जुल्म ही किया, क्योंकि उनके उलमा किताब पढ़ते थे, लेकिन उनके लोग जो थे ना उनको इससे महरूम रखा हुआ था कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे लिए ये नहीं, ये बहुत ऐसी चीज है कि बस हम ही पढ़ेंगे और हम ही जिसको बताएं जो चाहे बताएं। हमने भी तो कहीं ऐसा नहीं कर दिया कि ये तो मौलवियों का काम है, हमारा काम कहाँ है? ये तो उनका काम है, वो ही पढ़े। वो तो हाथ ही नहीं लगाने देते थे ना अपने आम लोगों को, कहते थे तुम्हारा नहीं है ये। हालांकि ये किताब का विरसा अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदिया को भी दिया, और फिर उन्होंने जिस तरह से अपनी किताब के अंदर माने भी बदले और वैसे भी तहरीफ कर दी, तो आज इसके माने बदल के कुछ और से कुछ और कर देते हैं, लेकिन इसके अल्फाज को कोई बदल ना सका, अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया। अगर उन्होंने भी पसे पुश्त डाला था, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि उन्होंने पसे पुश्त डाल दिया किताब को, इग्नोर किया, हालांकि हमने उनको वारिस बनाया था। क्योंकि अंबिया जो होते हैं ना वो मकान और जायदाद नहीं छोड़ के जाते विरासत के। आप सरसर ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, इल्म वाले लोग। ये अंबिया दिरहम और दीनार का विरसा नहीं छोड़ते, इनका विरसा ये इल्म है। इसीलिए तो अबू हुरैरा एक दफा बाजार गए तो उन्होंने कहा लोगों तुम बाजार में घूम रहे हो, देखो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा उधर बट रहा है मस्जिद में। लोग भागे चले गए, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या चीजें बट रही, आपके सामने आ जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला आ जाए आपको मिल जाए, या आपकी जो लाठी है वो मिल जाए, या आपकी कोई तलवार आपको मिल जाए, तो आपके तो खुशी के ठिकाने नहीं होंगे। आप सोचेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चीज मुझे मिल रही, और इस कुरान की आपको कदर नहीं है जो आपके घरों में पड़ा हुआ है, कि ये है असल विरसा नबी का, ये उन्होंने विरासत छोड़ी है, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। कितने मुसलमानों की आज तवज्जो है, आटे में नमक के बराबर। मिंबरों पे भी बैठे होते लेकिन कुरान का फहम नहीं होता। तो वो लोग गए वहां पे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, लोग बैठे हुए, कोई इधर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई दीन के अहकाम सीख रहा है कोई इस तरह। तो वो आए वापस तो अबू हुरैरा वहीं पे खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या देखा तुमने वहां पे? वो कहते वहां पे क्या बट रहा था, वहां पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, वहां पे तो इस तरह लोग कर रहे थे। तो उन्होंने फरमाया यही तो आप सल्लम का विरसा है, ये इल्म तो जिसकी हम कदर नहीं करते, और जिसने जितना ज्यादा इस इल्म को समेटा उतना ही उसने नबी का विरसा समेटा। अगर आप कोई लिसनर है, थोड़ा थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं, आपने उतना ही समेटा। अगर आप इसमें मेहनत करने वाले हैं, इसके साथ आप दिन और रात अपने लगाते हैं, रातों को भी पढ़ते हैं, चलो इसीलिए आपको टेस्ट दिया जाता है कि चलो इस बार नहीं पढ़ लेंगे, इसलिए नहीं कि आपके कोई नंबरों को हमने कुछ देख के आपको कोई डिग्रेड करना है, या अल्लाह माफ करे कोई किसी को ऊपर करना और किसी को नीचे करना है, या किसी को शर्मिंदा करना है, इसके लिए नहीं होता। इसके लिए होता है चलो दोबारा खोल तो लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसकी वजह से हम मेहनत कर लेते हैं जरा थोड़ा सा, और ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ के उसको और इसके ऊपर अपना वक्त लगाते हैं। तो अल्लाह ताला तो अपनी किताब की विरासत अपने चुने हुए बंदों को देता है, अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे होते हैं, वरना सारी दुनिया को ये विरसा मिल जाता, मगर सिलेक्शन अल्लाह ताला फरमाता है खुद इस किताब के वारिसों की। जिसका सीना इसके लिए खुल जाए, जिसको इसकी कदर आ जाए, वो तो खुश नसीब इंसान है, और ये खुश नसीबी इल्म वालों को मिलती है। वरना दुनिया के अंदर देखे ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और कंप्यूटर के भी लोग हैं, और लेकिन किसी को ये नहीं फरमाया वो अंबिया के वारिस होते हैं, फरमाया इल्म वाले वारिस होते हैं, अहले इल्म, तो ये वारिस है। लेकिन हमने क्या कदर की? हमारे हमारे वालदैन अगर कुछ छोड़ के जाए दुनिया से, तो हम तो उसकी भी कदर कर लेते हैं कि मेरी माँ की निशानी है, मेरी माँ की विरासत है, ये उसको देख देख के खुश होते हैं, और नबी की विरासत की हमें कोई परवाह नहीं है, पड़ी है हमारे घर में, पड़ी रहे, बस रखी हुई है, रमजान के रमजान खोलेंगे। ये उस विरासत का हमने हाल किया, क्या जवाब देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इसीलिए ये कुरान जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा, लका वालेका, तुम्हारे खिलाफ भी बोल सकता है। हक में तो उसी के बोलेगा ना जिसने इसको सीखा, इसको समझा, इसके साथ वक्त लगाया, इसके ऊपर अमल करने की कोशिशों में लग गया, ये उसके हक में हुज्जत बन जाए। और जिसने इसको पसे पोछ डाल दिया, परवाह ही नहीं है, अपनी ख्वाहिशात को आगे रखा, कुरान कुछ भी कहे हमें क्या, इससे पढ़ भी लिया लेकिन मेरी ख्वाहिश तो आगे ही रहेगी, तो फिर उनके खिलाफ ही बोलेगा। हक में तो उसी के बोलेगा जिसने इसको इमाम बनाया। तो ये अल्लाह ताला का एहसान माना करें कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दे दी कि जो मैं थोड़ा सा भी विरसा समेट रही हूं, मुझे तूने तौफीक दे दी, मुझे इसमें आगे बढ़ा, मुझे इसमें तेज दौड़ा, और सेटिस्फाई ना रहे कि बस जितना कर लिया बस काफी है जी। इसकी हिरस होनी चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा विरसा लूं अपने नबी का। तो ऐसी हिरस क्या हमारे अंदर है? उनको, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने किताब का वारिस बनाया था, कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत उनको दी थी। इसीलिए मुशरिकीन मक्का उनसे जा जाके पूछते थे, ये अहले इल्म है, ये किताब वाले हैं, और उन्होंने क्या हाल किया फिर। और हम उम्मत मुस्लिम आज क्या हाल कर रहे हैं जब ये हमें नबी की विरासत मिल गई है, ये कुरान की सूरत में हुदा व जिक्र अली उल अलबाब, ये हिदायत है क्या? ये किताब हिदायत है जो तौरात की बात की गई है यहाँ पे, और जिक्र है नसीहत है, लेकिन अकल वालों के लिए है, बेअकलों के लिए तो कोई हिदायत ही नहीं इसके अंदर। क्योंकि बेअकले जो हैं वो अपनी अकल को वैसे तो दुनिया के हर चीज में लगा रहे हैं लेकिन इसमें नहीं लगाते। तो कुरान भी इसी तरह अकल वालों के लिए नसीहत भी है। जिक्रा का यहाँ पे एक मतलब है नसीहत, इसमें नसीहत है ना, कितनी नसीहतें की जाती हैं हमें, और याद दहानी भी। हम ये जो सोचते हैं ना कि हम एक दफा पढ़ लें तो उसके बाद हमें जरूरत नहीं, क्या आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए होते? थोड़े दिन में ही तो कोई बात भूल जाती है हमें, रिमाइंडर तो हमें हमेशा, वैसे हम बहुत शिकायत करते हैं मेरा हाफिजा क्या करूं बहुत कमजोर, भूल जाती हैं हम बातों को, हर एक से पूछे वो यही कहेगा मुझे भूल जाता है, ये भूल जाता है। लेकिन जब कुरान की बात आती है तो उसमें नहीं हम सोचते कि ये सबक मुझे भूल जाएगा जो अल्लाह ताला ने मुझे बताया, जो मुझे सिखाया, जिसकी मुझे याद दहानी कराई, ये तो कल ही भूल जाना है, मुझे तो इसकी बार बार याद दहानी की जरूरत है, ये याद दहानी होती रहेगी तो मेरा दिल धुलता रहेगा, गलत जो काम है उनसे मैं बचती रहूंगी, अगर ये याद दहानी खत्म हो गई तो फिर सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर वहीं पे पॉइंट जीरो पे खड़े होंगे जहां पे अल्लाह ना करे कि जहां से शुरू किया था। हमें तो कांस्टेंट रिमाइंडर चाहिए, हमारे तो इतना हाफ़ज़ा कमजोर है हमें तो एक हफ्ते बाद ही भूल जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। और जो लोग सोचते हैं कि मुझे कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अब तो कोई जरूरत ही नहीं, कहाँ से याद दहानी पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तो याद दहानी नहीं हो सकती, ये दुनिया इतना खींचती है ना अपनी तरफ, इसमें इतनी टेम्पटेशन है, हर चीज आपको भुलाने वाली है आखरत और अल्लाह ताला की याद, हर चीज उस तरफ वो खींच रही है, कहीं आपको याद दहानियां नहीं मिलेंगी, ना आखरत की, ना अल्लाह से मुलाकात की, ना आमालनामे में क्या लिखा जा रहा है, ना हिसाब किताब की, किसी चीज की याद दहानी नहीं मिलेगी। आप स्कूल चले जाएं, आप ऑफिस चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, कहां पे याद दहानियां मिल रही हैं? आप दोस्तों जो इस तरह के हमने दोस्त बनाए होते हैं उनके अंदर बैठ जाएं, कहीं पे भी नहीं याद दहानी मिलती, अनलेस वो अल्लाह वाले हो। तो याद दहानियां तो यहाँ पे बहुत कम है, हर चीज भुलाएगी भुलाएगी, आखरत की याद, अल्लाह का जिक्र, दीन पे चलने के शौक को भुला देगी, जन्नत को भुला देगी, जहन्नुम को भुला देगी, तो सब कुछ यही नजर आएगा। तो किताब याद दहानी कराती है, कैसे इसको छोड़ सकते, इसमें तो रिमाइंडर्स हैं हमारे लिए। तो लेकिन उनके लिए बस जो अकल वाले हों, यानी हिदायत तो है इसके अंदर, नसीहत तो है, लेकिन हर कोई नहीं लेगा, जिनको ये अकल होगी, अकल मतलब अकल वाले हम कहें, हम तो बहुत अकल वाले, ये सारे क्या बेवकूफ हैं जो ये इतने बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, और पता नहीं क्या सदर बने हुए, वजीर बने हुए, क्या ये बेवकूफ है? अकल वाले ही है ना वो, कुरान अकल वाला किसको कहता है? अकल वाला वाकई, देखिए आप इस बात को समझे, अकल वाला वाकई वो है जिसको ये पता हो कि मेरी फलाह, मेरी कामयाबी असल में कहाँ है, किस में है, जो इस दुनिया की कीमत भी जानता और आखिरत की कीमत भी जानता, जिसको इस दुनिया की जिंदगी की हकीकत भी समझ आ जाए और आखिरत की जिंदगी की हकीकत भी समझ आ जाए, जिसको ये पता चल जाए कि इस दुनिया में मेरा कयाम कितना है और आखिरत में मेरा कयाम कितना है, जिसको ये समझ आ जाए कि अल्लाह की नाराजगी क्या होती है और उसकी रजा क्या है, और जिसको ये शौक हो अल्लाह की रजा को पाने का, वो ही अकलमंद है। और जिसको इस सौदे का ही पता नहीं और वो लुटाए जा रहा है अपनी जिंदगी को यहीं पे, अपनी एनर्जी को यहीं पे लगाता जा रहा है, एक के बाद एक चीज, एक के बाद एक चीज स्टार्ट, बस सब कुछ लगा दूं, ये मेरे पास 1 घंटा भी बचा ना, इसको भी मैं इसी में इन्वेस्ट कर देता हूं क्योंकि यहां से और फायदा मिल जाएगा, थोड़ा और पैसा बन जाएगा, मैं अपनी एनर्जी इसमें लगाऊं, मैं अपना माल इसमें लगाऊं, मैं अपना टाइम इसमें लगाऊं, सब इसके लिए लगा रहा हूं, और आखिरत का तो देखा जाएगा। वो अकल वाला नहीं है जिसने ये सोच लिया खाओ पियो ऐश करो यही जिंदगी है, जीना तो एक दफा है ना, बार बार थोड़ी आना है, खाओ पियो बस मजा करो, ये अकल वाला नहीं है। अकल वाला वो है जो इस सौदे को जान गया कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने में फायदा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने में फायदा है, चाहे दुनिया को वो नुकसान ही नजर आ रहा हो, देखो अपनी दुनिया का कितना नुकसान कर रहा है, देखो ये तो पागल है, मगर अकल वाला वो है जिसको ये समझ आ जाए। तो तौरात पर अमल करने वाले क्या फरमाया, कौन लोग हैं, जो अकल वाले हैं, और कुरान पर भी अमल करने वाले वही लोग होंगे जो अकल वाले होंगे, जिनको नफा और नुकसान की सही डेफिनेशन समझ आ जाए, वो डेफिनेशन पे नहीं चलते जिस पे दुनिया चलती, कि ये नफा है और ये नुकसान है, जो उसकी लोगों ने कह दिया बस वही नफा नुकसान है, लोग कहें पागल हो तुम, ये क्या कर रही हो, इससे तो तुम्हारा इतना नुकसान होगा, इससे क्या फायदा होगा, उनको समझ है ना, वो अकल वाले हैं, वो ये स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं डिफाइन करते नफा और नुकसान को, जो जिस पे दुनिया करती है। हम सोचे हम अकल वाले हैं कि नहीं, चाहे मैं भी कितनी भी पीएचडी की हुई है, अकल वाले भी हैं कि नहीं, अपना फायदा सोच रहे हैं कि नहीं, किसमें फायदा, हम कुराने पाक पढ़ते हैं, हम हमें समझ होनी चाहिए, चूम चूम के भी रखते हैं, गिलाफों में भी सजाते हैं, मगर सवाल यह है कि इससे फायदा कितना उठा रहे हैं, फायदा तो तभी होगा ना जब सीख के हम इसके ऊपर अमल करने वाले बन जाए, अपनी ख्वाहिश को पीछे कर दे, मेरा दिल ये करता है, इसमें कितना मजा आएगा। आजकल वैसे सारे ही ऐसा कर रहे हैं, अगर यही करना है तो फिर कुरान पढ़ के हमने क्या फायदा हासिल किया। तो बात तो ये है कि असल इसके वारिस वो है जो इसके इस तरह से फायदा उठा रहे हैं इससे, कि इसको समझ के उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, फिर इंसान अपने ऊपर चेक रखता है कि मैं ये कर सकती हूं और ये नहीं कर सकती, ये खा सकती हूँ ये नहीं खा सकती, ये बोल सकती हूँ ये नहीं बोल सकती, ये पहन सकती हूँ ये नहीं पहन सकती, ये है अकल वाले। अकल जो है ना लुब से उलुल अलबाब है ना, यानी रोक रखना, रोक लगाना, तो ये रोक लगा देती है ख्वाहिशात के आगे, बंद बांध देती है, ख्वाहिश अच्छा, ख्वाहिश के बंदे नहीं बनना, अल्लाह के बंदे बनना है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फसबिर इन्ना वादल्लाही हक, ए नबी आप सबर कीजिए, हालात कितने मुश्किल थे, अल्लाह ताला ने कभी मर्दे मोमिन की मिसाल बता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दी, मूसा अलैहि सलाम के हवाल और बनी इसराइल का तर्ज अमल बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया ये कि देखिए मूसा अलैहि सलाम किन किन चीजों से गुजरे, देखिए उनके मुखालिफीन उनके लिए कैसे कैसे प्लान करते थे, देखिए वो फिर कैसे साबित कदमी से सबर के साथ चलते रहे, सबर पता है क्या होता है? सबर ये होता है कि इंसान जम जाए, डट जाए और अपना रास्ता ना छोड़े जिस रास्ते पे चल रहा था। ये बेसब्री है कि जरा सा कुछ बचला हुआ, बस जी हम नहीं कर सकते, अब हम नहीं इस पे चल सकते, नहीं जी मैं बस सब छोड़ रही हूँ, नहीं जी मेरे से नहीं बातें सुनी जाती, नहीं जी मेरे से नहीं ये ताने बर्दाश्त किए जाते, नहीं जी मैं वो लोग घूरते हैं मेरे से नहीं ये होता, नहीं मेरी जॉब इस तरह से चली ना जाए इसलिए मैं नहीं कर सकती। ये नहीं है सबर, ये तो बेसब्री है। सबर है इतिहाद के ऊपर जम जाना, अल्लाह के रास्ते पे जम जाना, ये सबर है। वसबिर ए नबी, आप सबर कीजिए, ये जो भी कह रहे हैं जो भी कर रहे हैं मुखालफतें, आप सबर करें, इस्तकामत से चलते रहें। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा सबर करने वाले थे, बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने सबर करने वाले थे, आपके ऊपर जितनी तकालीफ आई हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आप पर इतनी सख्तियां आई जो किसी और पे नहीं आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के रास्ते में इतनी तकलीफें दी गई जो किसी और को नहीं दी गई। बताइए कहना आसान होता है, जब हम सीरत में भी पढ़ते हैं ये पढ़ना आसान है, उस एक एक लम्हे से गुजरना जो ताइफ में गुजरा, जो उहद में गुजरा, जो आपकी बेटियों को तलाक हो गई तब गुजरा, जब अपने प्यारे दुनिया से चले गए जो सबसे ज्यादा सपोर्टर थे वो चले गए, और जब मुनाफिकीन अंदर से ही बैठ के जड़ें काटने लग गए, ये सारी चीजें बर्दाश्त करना कोई आसान नहीं होता। जब अपने प्यारे हैं, अपने साथी हैं, उनको अजियतें दी जा रही हैं सामने, ये बर्दाश्त करना तो आसान नहीं होता।